ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ब्रह्म विमोहन लीला की कथा जारी रखेंगे, सुनना चाहते हैं? तो प्रसंग ये चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर लौट के आए हैं। जब वन में वत्सों को ढूंढने गए थे तो वत्स नहीं मिले कहीं पर, उनके पद चिन्ह भी नहीं मिले। और जब यहां पर लौट कर आए तो क्या देखते हैं कि ग्वाल बाल भी वहां नहीं है। दोनों वत्स और वत्स पालक दोनों गायब हो चुके हैं। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने क्षणिक थोड़े समय के लिए ही भ्रम का प्रदर्शन किया, जैसे कि वो आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ग्वाल बाल कहां गए। लेकिन आखिर भगवान विश्ववित हैं। विश्ववित मतलब उन्हें सभी कुछ मालूम। जैसे यहां पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, क्वापि अदृष्ट्वांतर विपिने वत्सान पालांश्च विश्ववित। विश्ववित मतलब उनको सब कुछ मालूम है, ऐसी कोई बात नहीं है जो उनको नहीं मालूम। सर्वज्ञ, भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान काल में क्या हो रहा है और भविष्य काल में क्या होगा सब जानते हैं। और हर जगह अनंत कोटि ब्रह्मांडों में और आध्यात्मिक जगत में भी क्या हो रहा है सब कुछ जानते हैं। काल और जगह की सीमा उनके ऊपर लागू नहीं होती। तो हालांकि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल के रूप में ब्रह्मा जी से बहुत छोटे थे, क्योंकि आखिर ग्वाल बाल मतलब एक छोटे 5 साल के बालक थे, और कहां ब्रह्मा सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मलोक में निवास करने वाले। तो ब्रह्मा जी के सामने एक छोटा ग्वाल बाल तो कुछ भी नहीं होता, और कृष्ण भगवान ने अपने आप को ग्वाल बाल के रूप में पेश किया था वृंदावन में। तो इसलिए क्षणिक उन्होंने भ्रम का प्रदर्शन किया, लेकिन क्योंकि वो सर्वव्यापी सर्वज्ञ विश्ववित भगवान हैं, इसलिए तुरंत उन्होंने समझ लिया। क्या समझ लिया? सर्वम वृद्धि कृतम कृष्णः सहसा अवजागम ह। तुरंत सहसा वो समझ गए कि क्या है विधि कृतम। विधि ब्रह्मा जी का और एक नाम है। तो तुरंत वो समझ गए कि ब्रह्मा जी मेरे माया जाल में फंस गए हैं, और इसलिए उन्होंने इन ग्वाल बालों को और इन वत्सों को चुरा लिया है। लेकिन फिर भी एक मासूम बच्चे की भूमिका निभा रहे थे, इसलिए ब्रह्मा जी को ज्ञात होने नहीं दिया कि वो समझ गए हैं, इसलिए फिर भी घूम रहे हैं ताकि ब्रह्मा जी और भी गहरी माया में प्रवेश करें। अगर वो तुरंत ऐसे पेश आते कि भाई मुझे सब मालूम हो गया ब्रह्मा जी, मुझे पता चल गया तुम क्या कर रहे हो, अगर ऐसा कर देते तो भांडा फूट जाता, सब पता चल जाता, फिर लीला का मजा ही नहीं आ जाता। तो ग्वाल बाल के रूप में इधर उधर घूम रहे हैं, मानो कि कुछ पता ही नहीं है उनको क्या हो रहा है। इसलिए लीला को बढ़ाने के लिए, ब्रह्मा जी को आनंद देने के लिए, ब्रह्मा जी को सबक सिखाने के लिए और हम सबको सबक सिखाकर आनंद दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने मासूम बालक का रूप जो है वो बनाए रखा, जिससे कि ब्रह्मा जी को बिल्कुल पता ना चले। ये एक नाटकीय प्रदर्शन था भगवान का। जब कोई नाट्य चल रहा होता है तो उस समय जो नट होता है, जो वहां कार्य करता है मंच पर, वो कोई भी रूप धारण कर लेता है, जैसे कोई शिवाजी महाराज का रोल कर रहा है और कोई औरंगजेब का, तो दोनों नटों को पता है कि शिवाजी क्या करने वाले हैं, औरंगजेब क्या करने वाले हैं, कौन किससे क्या बोलने वाला है, सब मालूम है। लेकिन जब उस पोशाक पहनकर जनता के सामने उपस्थित होते हैं तो वो ये दिखाई नहीं पड़ता अब जनता को, इनको सब मालूम है। तो ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी ऐसी लीला करते हैं, और जो इस लीला में लोग आते हैं दूसरों को भी पता नहीं होता कि आगे क्या चलने वाला है। कृष्ण भगवान इस बात को छुपा कर रखते हैं। उनकी योग माया शक्ति दूसरे लोगों के आंखों के ऊपर पर्दा ढक देती है, ताकि उनको समझ में आए कि आगे क्या होने वाला है, सस्पेंस को बनाए रखते हैं। कुंती महारानी श्रीमद् भागवत में एक सुंदर श्लोक में बताती है, माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। वो कहती है कि जो मूढ़ लोग होते हैं अर्थात अज्ञानी लोग होते हैं, उनके आंखों के सामने माया जवनक अच्छन्नम, जवनक मतलब पर्दा, अच्छन्नम मतलब पर्दा सामने डाल देते हैं, माया का पर्दा। माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञा, जो अज्ञानी लोग हैं ये किसकी माया है, अधोक्षज अज्ञाधोक्षजम अव्ययम, जो कि अव्यय हैं। इसीलिए न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, जो मूढ़ है अज्ञानी है, न दृशा वो देख नहीं सकते हैं भगवान श्री कृष्ण को, जो कि नटो नाट्य धरो यथा। हालांकि उनके सामने वही परम भगवान उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि माया का पर्दा उनके सामने है, इसलिए वो उनको देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। जिस तरह से जब कोई शिवाजी महाराज की भूमिका निभा रहा है स्टेज के ऊपर, तो शायद उसके मोहल्ले में रहने वाले कोई व्यक्ति उसको पहचान न पाए, वो जान नहीं पाएगा कि ये शिवाजी महाराज है, क्योंकि पगड़ी पहने हुई है और दाढ़ी है, तलवार है, बड़े बड़े और सारे वो राजा के कपड़े हैं, वो नहीं पहचान सकता, क्योंकि निकट से जानता नहीं उस व्यक्ति को। तो उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बताते हैं, नाहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो यम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम, कि हे अर्जुन, जब मैं यहां धरातल पे आता हूं तो उस समय लोग मुझे नहीं जान सकते, न अहम प्रकाश है सर्वस्य, क्यों नहीं जान सकते, योग माया समावृत, मेरी माया शक्ति उनके आंखों के सामने पर्दा बनकर खड़ी हो जाती है, इसलिए अज्ञाधोक्षजम, फिर वो जान नहीं सकते मुझे। उस तरह से ब्रह्मा जी के आंखों के सामने भी पर्दा आ गया, पहले छोटा सा पर्दा था, ट्रांसपेरेंट पर्दा, फिर उसके सामने पर्दा मोटा होता गया, अर्थात ब्रह्मा जी गहरे से गहरे माया में ज्यादा से ज्यादा अंदर प्रवेश करने लगे। जैसे जैसे भगवान अपनी लीला का प्रदर्शन कर रहे थे, अपना नाट्य जारी रख रहे थे, वैसे वैसे ब्रह्मा जी के ऊपर आंखों के सामने माया बढ़ती जा रही थी। तो इस तरह से ब्रह्म विमोहन लीला इसको कहते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी तो पहले ही मोहित हो गए थे, अभी उनका मोह बढ़ते जा रहा था। तो उधर कृष्ण एक मासूम ग्वाल बाल के रूप में इधर उधर घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और अंदर मन ही मन में सोच रहे हैं कि अरे मेरे ग्वाल बाल नहीं है, मित्र नहीं है, मेरे वत्स नहीं है। अगर मैं इस अवस्था में वृंदावन लौट के जाऊंगा तो सारे जो माताएं हैं, सारे गोपियां हैं, अपने बच्चों के अनुपस्थिति में बहुत दुखी हो जाएंगे, उनका क्या होगा, हृदय टूट जाएगा। हम जाके कह देंगे कि भाई लड़के रहे नहीं, पता नहीं कहां चले गए, गुम हो गए, तो माताएं सब रोने लगेंगी। और फिर गऊं का क्या होगा, जब गऊं को जाके हम बताएंगे कि वत्स आपके गायब हो गए, तो वो तो भी रोने लगेंगे। तो सारे वृंदावन में क्या हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा, सभी लोग दुखी हो जाएंगे। तो मैं ऐसी अवस्था में कैसे जा सकता हूं। अब भगवान के सामने ये समस्या खड़ी हो गई। देखिए भगवान के सामने भी समस्याएं आती हैं, ऐसे नहीं कि हमारे सामने आती हैं, केवल हमारे सामने आती हैं। लेकिन भगवान में और हम में अंतर क्या होता है कि भगवान के लिए हर समस्या का हल होता है, और उस हल को एक आकार देने के लिए, उसको सार्थक करने के लिए पूरा सामर्थ्य रहता है उनके अंदर। पहली बात तो हमारे सामने जब समस्याएं खड़ी हो जाती हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमको समाधान, उनका हल मालूम नहीं होता, और हल मालूम भी होता है तो उसको सार्थक करने के लिए वो क्षमता नहीं रहती, बुद्धि नहीं रहती, पात्रता नहीं रहती है। लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं, उन्होंने सोचा ठीक है, ये ब्रह्मा जी की चाल है ना, ब्रह्मा जी ने ये समस्या खड़ी कर दी ना हमारे सामने, इसके लिए उपाय भी हमारे पास है, और तुरंत उपाय को उन्होंने प्रदर्शित कर दिया। क्या किया, अब यहाँ सुखदेव गोस्वामी इसको वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण ने क्या उपाय ढूंढ निकाला। ततः कृष्ण मुदम कर्तुम तन्मात्रीणाम च कस्यच उभयायतम आत्मानम चक्रे विश्वकृतीश्वरः। ततः उसके बाद भगवान ने क्या किया, कृष्ण मुदम कर्तुम, मुदम अर्थात आनंद, आनंद देने के लिए, किसको आनंद देने के लिए, तन मातृणाम, सारे माताओं को, केवल उनकी माता के लिए नहीं, ग्वाल बालों की माताओं को, और केवल ग्वाल बालों की माताओं को नहीं, और वत्सों के माताओं को भी, अर्थात गवों को। तो गोपियों को और गवों को आनंद देने के लिए, च कस्य, और ब्रह्मा जी को आनंद देने के लिए। देखिए ब्रह्मा जी को आनंद देना चाहते थे वो, क्योंकि ब्रह्मा जी भी आखिर भक्त हैं, थोड़े बहुत भ्रमित तो हो चुके थे लेकिन आखिर भक्त हैं भगवान के, इसलिए उनको भी आनंद देना चाहते थे। तो उनको आनंद देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उभयायतम आत्मानम, अपने आप को विस्तारित कर लिया, गोप ग्वाल बालों के रूप में विस्तारित किया और वत्सों के रूप में विस्तारित किया। और ये भगवान के लिए कोई कठिन बात नहीं थी क्योंकि वो ईश्वर है। यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं चक्रे विश्वकृत ईश्वरः। विश्वकृत मतलब जिन्होंने सारे सृष्टि को बनाया है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को बनाया है, एको बहुश्याम। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तारित किया है इतने सारे जीवात्माओं के रूप में। तो जब पहले से ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तार इतना किया हुआ है, तो फिर और थोड़े ग्वाल बाल और थोड़े गोपों में विस्तार करने के लिए भगवान के लिए क्या असुविधा है, कोई कठिनाई नहीं। हालांकि वहां ग्वाल बाल की संख्या हजारों में थी, वत्सों की संख्या हजारों में थी, लेकिन फिर भी जीवों की संख्या कितनी है अनंत कोटि ब्रह्मांडों में और आध्यात्मिक जगत में, असंख्य। तो हजारों हजारों की संख्या की तुलना अगर अनंत जीवों से तुलना की जाए तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान के लिए ये कोई कठिन बात नहीं थी, आसानी से उन्होंने अपने आप को विस्तारित कर लिया। ब्रह्मा जी तो पहले ही माया में फंसे थे और वो ऐसे भ्रमित अवस्था में ग्वाल बालों को अपनी शक्ति बताना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, बिल्कुल अपने आप को ग्वाल बालों का और वर्षों का डुप्लीकेट बना दिया, कॉपी बना दिया। और पहले जैसे उनकी लीलाएं चल रही थी, पिकनिक चल रहा था, भोजन का आनंद सभी लोग जैसे ले रहे थे, वैसे ही लीला जारी रखे भगवान ने। और आगे चल के जब ब्रह्मा जी इसका दर्शन करने वाले हैं तो और भी ज्यादा भ्रमित हो जाएंगे। तो हर एक व्यक्ति अलग अलग जीव रहता है, और क्योंकि वो अलग अलग जीव रहता है, उसकी अलग इच्छाएं, अलग प्रवृत्तियां, सब अलग अलग रहती हैं। उसी तरह से ये जो सारे ग्वाल बाल थे, ये सब अलग अलग थे। कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई थोड़ा बुटका, किसका थोड़ा नाक बड़ा था, किसका नाक थोड़ा चपटा हुआ था, किसके कान बड़े थे, किसके आंख एक तरह के थे, किसके दांत एक तरह के, किसके दूसरे तरह के। तो इनके अलग अलग तरह के आकृति थे, चेहरे मोहरे थे, अलग अलग तरह का शरीर था। किसी के कंधे बहुत बड़े थे, किसी के छोटे थे, उनके कपड़े अलग अलग थे, उनके आभूषण अलग अलग थे, उनके बात करने का तरीका अलग अलग था, मुंह हिलाने का अलग अलग तरीका था। देखिए हर एक व्यक्ति के कितने कितने गुण लक्षण वगैरह होते हैं। कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक नहीं हो सकते। जुड़े भाई बहन भी होते हैं तो उनमें भी बहुत अंतर होता है ना। हमें शायद पहले देखने में, पहचानने में हमें कोई कठिनाई लगती हो, लेकिन थोड़ा बहुत देखेंगे ध्यान से तो तुरंत पता चल जाएगा कि बात करने का ढंग कैसा होता है, देखने का ढंग, चलने का ढंग, बैठने का ढंग। इस तरह से हर एक व्यक्ति के अलग अलग रूप, आकृति, लक्षण वगैरह वगैरह रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को ऐसा विस्तारित किया कि उन्होंने बिल्कुल शत प्रतिशत अपने आप को उन बालकों का कॉपी बना दिया। कोई अंतर नहीं। अगर किसी का कान यूं थोड़ा झुक गया होता तो वो भी उन्होंने ऐसे कर दिया। हर एक व्यक्ति के बोलने का तरीका वो भी बिल्कुल कॉपी करा दिया। देखिए, और इतना ही नहीं, ग्वाल वत्सों का भी उन्होंने कॉपी कर दिया। वत्सों को भी उनके भी अलग अलग रंग थे, अलग अलग लक्षण, अलग अलग कार्य इत्यादि। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्यों के विशेष लक्षण होते हैं। गवों के भी होते हैं, पशुओं के भी होते हैं, पक्षियों के भी होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे गौवे थे। नंद महाराज के कितने थे गाय, कोई बता सकते हैं? 9 लाख। जब भगवान श्री कृष्ण थोड़े बड़े हुए थे, बड़े हो गए, और जब पौगंड अवस्था में उनके हाथों में गाय दिए गए चराने के लिए, तो वो उनको भी वन में ले जाया करते थे। पौगंड की अवस्था तक तो वो केवल वत्सों को चराया करते थे, लेकिन पौगंड अवस्था की प्राप्ति के पश्चात बड़े गाय भी आने लगे। तो बताया जाता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि कृष्ण भगवान जो गाय चराया करते थे वो 4 रंग के हुआ करते थे, सफेद, काला, लाल और पीला। ये 4 रंग के गौवे थे, और हर एक रंग के गाय के 25 वृंद या झुंड थे। तो 25 ऐसे सफेद झुंड थे, 25 काले, 25 लाल, 25 पीले, तो कुल मिलाकर 100 वृंद हो गए, 100 ग्रुप। और ऐसे 8 और वृंद थे जिनके विशेष विशेष लक्षण थे। जैसे हर एक वृंद था जिसमें सारे गायों का मुख जो है मृदंग की तरह था, मृदंग का आकार। और एक झुंड था जिसमें गवों का मुख जो है सिंह जैसा था, सिंहमुखी और मृदंगमुखी। किसी और झुंड में, तीसरे झुंड में ऐसे गाय थे जिनके सारे सबके ललाट के ऊपर तिलक की निशानी थी या तिलक का रंग था उनका। तो ऐसे और 8 थे, तो 100 हो गए, 4 रंगों वाले 25-25 और ये 8 अलग अलग विशेष विशेष लक्षण वाले गाय। तो कुल मिलाकर कितने वृंद हो गए गायों के, गौओं के? 108। और कृष्ण भगवान के पास एक मोतियों की माला हुआ करती थी, मणियों की माला। उनमें कितने मणके थे, मणि थे 108, जैसे हमारे पास होते हैं। हम लोग कृष्ण का नाम जपते हैं ना, हमारे 108 मणके पे, तो कृष्ण भगवान अपने गौओं का नाम जपते थे, क्यों कृष्ण आखिर अपना नाम तो नहीं जप सकते, कृष्ण कृष्ण, तो अपने गौओं का नाम जपते थे। देखिए कैसे जपते थे, जब सायंकाल हो जाता था और गौओं को वापस घर ले जाने का समय आ जाता था, तब वो देखते कि पहला झुंड, क्योंकि 108 वृंद हैं, तो पहले मणके के ऊपर देखते कि अच्छा अभी समय हो गया है सफेद गायों को बुलाने के लिए, तो सफेद गाय के पहले झुंड में जो एक गाय थी उसका नाम था समझ लीजिए धवली, तो बुलाते हे धवली, तो जिस वृंद में धवली थी वो सारे जो गाय हैं धवली के साथ में सब आ जाते कृष्ण के पास, हे चंदनी, फिर दूसरे जो सफेद गायों का झुंड था जिसमें चंदनी प्रमुख थी वो चंदनी के साथ में सब आ जाते थे, हे मुक्ता, तो मुक्ता वाले वृंद आ जाते थे, हे गंगा, तो गंगा वाला झुंड आ जाता था, तो ऐसे सारे 25 के 25 सफेद गायों के झुंड आ गए। अब रह गए लाल, हे अरुणी, तो अरुणी जो लाल गायों के झुंड में थी तो वो सारा झुंड आ जाता था, हे कुमकुमा, कुमकुम वाले नाम जो झुंड है वो आ जाते थे, हे सरस्वती, ये भी लाल रंग की गाय, तो वो जो झुंड थे वहां वो वृंद वो सारे गाय आ गए। और फिर रह गए पीले रंग के, पीले रंग के वो बुलाने लगे हे पिंगला, हे हरितकी, तो उनके झुंड आ गए। और इस तरह से, और काले जो थे हे श्यामला, हे यमुना, हे धुमला, तो इनके ये सब नाम हुआ करते थे। तो जैसे जैसे एक एक वृंद आ जाता था तो एक एक मणके नीचे करते थे, क्योंकि 108 वृंद थे और बड़े मधुर ढंग से बुलाते थे। हम जैसे बुला रहे हैं वो तो बहुत इतना मधुर नहीं, लेकिन जैसे कृष्ण बुलाते थे बहुत मधुर ढंग से, और गाय जैसे ही सुनते थी तो आ जाया करती थी। तो नंदग्राम के और बरसाना के बीच में ये स्थान है, आप में से जो वृंदावन यात्रा में आए थे आपको याद होगा रूप गोस्वामी जी के भजन कुटीर भी वहां है, तो वहां कृष्ण खड़े होकर बांसुरी बजाया करते थे और कभी कभी बुलाया करते थे हे धवली, हे गंगा, हे मुक्ता। कृष्ण भगवान के 9 लाख गाय थे और हर एक गाय का नाम जानते थे और हर एक गाय को नाम से पहचान सकते थे। 9 लाख गायों को अलग अलग उनके क्या रूप हैं। देखिए हमें 5 गाय होती है तो एक गाय से दूसरे गाय हमें समझ में नहीं आता कौन सी गाय, लेकिन कृष्ण भगवान ठीक ठाक जानते थे। तो इस तरह से ये कृष्ण भगवान की पौगंड लीला थी। इस समय तो कृष्ण भगवान कुमार लीला कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं गायों के वत्स थे, इसलिए इनके भी तो उसी तरह के आकार थे, अलग अलग आकृति थे, अलग अलग रूप, अलग अलग रंग, तो इसलिए कृष्ण भगवान के साथ में बहुत सारे वत्स थे, हजारों की संख्या में वत्स थे, तो इनको भी ऐसे ही कृष्ण भगवान बांसुरी से बुलाया करते थे। तो समझ लीजिए कि इतने सारे वत्सों के अलग अलग रंग वाले थे, और अलग अलग रंगों में भी जो नस्ल अलग अलग होते हैं, जाति अलग अलग होते हैं, जैसे आजकल भी हम देखते हैं कि देशी नस्ल जो होते हैं गौओं के कितने सारे हैं। आजकल हमने आधुनिक नाम दिए हैं नस्लों को, लेकिन ये बहुत प्राचीन है, बहुत पुराने काल से चलती आ रही है, जैसे कि हरियाणवी जो हरियाणा में मिलती है, कठियार जो कठियावाड़ में मिलती है, थारपारकर जो थार रेगिस्तान में मिलते हैं, गिर जो गिर जंगल में मिलते हैं, फिर ओंगोल जो ओंगोल देश में मिलते हैं, फिर लाल सिंधी जो सिंध से आती हैं, खिल्लड़, कंकरेज, नगौड़ी जो नागौड़ से आती हैं, ऐसे साहिवाल जो पंजाब से आती हैं। तो अभी अलग अलग नस्ल हैं ये गौओं के, और ये नस्ल का विभाजन कैसे हुआ, अलग अलग उनकी आकृति होती है, इनका ककुद जो पीठ का ककुद होता है, किसी का बड़ा, किसी का छोटा, कोई लंबा, कोई बुटका, ये उनका अलग अलग पहचान होती है कि अलग अलग उनके सर के या मुख के उनके चेहरे के आकार होते हैं। तो इस हिसाब से अलग अलग गौओं का विभाजन किया जाता है, उनको नस्लों में विभाजित किया जाता है। तो समझ लीजिए कि जिस तरह से मनुष्यों में भी कितनी विविधता होती है आकृति की, रूप के, लक्षण के इत्यादि, उतना ही गवों के बीच में, वत्सों के बीच में हुआ करता था। तो कृष्ण भगवान ने जब अपने आप को विस्तारित किया तो इन सारे हजारों हजारों वत्सों का और इन हजारों हजारों ग्वाल बालों का बिल्कुल कॉपी किया, हर एक की बिल्कुल डिक्टो कॉपी, समझ लीजिए। हमारे लिए तो बिल्कुल असंभव है समझना भी। तो सुखदेव गोस्वामी कैसा वर्णन करते हैं इसका, आइए हम पढ़ते हैं। तो ये श्लोक यहां पर रखा हुआ है आपके लिए। यावद वत्सप वत्स काल्पक वपुर यावत करांग्र्यादिकम्। यावद यष्टि विषाण वेणुदलशिक यावद विभूषांभरम्। यावद शील गुणाभिधाकृति वयो यावद विहारादिकम्। सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। यावत् वत्सप वत्स काल्पक वपुर यावत् कराङ्घ्र्यादिकम्। यावत् यष्टि विषाण वेणुदलशिक यावत् विभूषाम्बरम्। यावत् शील गुणाभिधाकृति वयो यावत् विहारादिकम्। सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। तो यहां सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अजह अर्थात कृष्ण ने सर्वस्वरूपो बभौ अपने आप को विस्तार करके बिल्कुल जैसे ग्वाल बाल और वत्स थे वैसे ही अपने आप को विस्तार किया। और कैसे विस्तार किया, यावद वत्सप जैसे वत्स थे। वत्सप मतलब वत्सपालक का वत्सप हुआ, तो जैसे वत्सप थे वैसे के वैसे उन्होंने अपने आप को विस्तार किया। वत्सक अल्पक वपुहु, वत्सक मतलब वत्स, अल्पक वपुहु मतलब जिनके शरीर बहुत कोमल हैं, जैसे छोटे छोटे थे, तो उनके भी कॉपी किए भगवान ने। बिल्कुल जैसे वो वत्स थे वैसे वो भी हुए। यावत कर अंग्री आदिकम, जैसे दोनों के ग्वाल बालों के और वत्सों के हाथ थे पैर थे वैसे ही उंगलियां नाखून सब कुछ। और क्या, यावत यष्टि विषाण वेणु दलशिक, जैसे उनके बांसुरी थे, जैसे उनके लाठी थी, जैसे उनके पास में जो प्रसाद की थैली या जो प्रसाद का डब्बा था वो, और सारे जो भी उनके पास सामग्री थी, जैसे कि उनके उनका जो भैंस के सींग का बनाया हुआ जो बाजा था श्रृंग, सब कुछ वैसे का वैसे। क्योंकि बांसुरी भी जो थी अलग अलग ग्वाल बाल के, वो अलग अलग थे, अलग अलग आकार के थे, किसी के पांच छेद वाले, किसी के चार, किसी के और, किसी के लंबे, किसी के बड़े छोटे, हर एक बांसुरी को भी उन्होंने बिल्कुल डुप्लीकेट करा दिया। हा? और क्या किया, यावत विभूष अंबरम, विभूष मतलब सारे विभूषण आभूषण गहने जो भी पहने थे उन्होंने। वो कैसे गहने पहना करते थे, घर में से तो जाते जाने के पहले अपने अपनी माता उनको गहने तो पहनाते ही थे, लेकिन जैसे जैसे वन में प्रवेश करते थे तो उस दौरान जो रास्ते में मिल गया उसको उठाकर अपने आप को सजाते थे। जैसे कोई फल मिल गया तो फल किसी ने कान में डाल दिया, तो किसी ने बाल में डाल दिया, और कुछ वहां धातु मिल गए उसका कुछ करके फिर अपने शरीर में वो अंजन जैसे लगा दिया, ऑइंटमेंट, फेयर एंड लवली क्रीम, और उससे वास्तव में वो फिर बहुत सुंदर लगने लगते थे। फिर किसी ने कोई अंकुर देखे, किसी ने कोई पत्ते देखे, अलग अलग जगह अपने आप को सजाया करते थे, जैसे जैसे उसकी अपनी अपनी इच्छा, जिसको जैसे लगता है कि मैं ऐसे अच्छा दिखूंगा तो वो कोई पत्ता डाल दिया, किसी ने फूल डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया। तो हर एक व्यक्ति अलग अलग से अपने आप को सजाता था, तो कृष्ण भगवान ने हर एक के सजावट को डुप्लीकेट करा दिया। जिसने कौन सा किस तरह का पत्ता किस तरह से सजा हुआ अपने बालों में अपने कानों के पीछे, सब कुछ वैसे का वैसे, और कपड़े भी वैसे, अलग अलग स्टाइल में ग्वाल बाल पहनते थे। जैसे हमारे भक्त भी हम देखते हैं अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, या शाल पहनने का भी तरीका अलग अलग होता है, कोई यूं पहनता है तो कोई यूं पहनता है तो कोई ऐसे पहनता है, अलग अलग तरह से। उसी तरह से ग्वाल बाल भी, कोई ऐसा पट्टा बांधते थे तो कोई ऐसे इस तरह से बांध देता था। तो जैसे उन्होंने कपड़े पहने थे वैसे के वैसे कृष्ण भगवान ने भी अपने आप को विस्तार किया, रंग भी वैसे, कपड़ा का मटेरियल ऐसे। उस जमाने में तो पॉलिएस्टर वगैरह नहीं था, लेकिन जैसे भी अच्छे अच्छे कपड़े थे वो पहनते थे रेशम के। यावत शील गुण अभिधा आकृति वयो, जैसे से हर एक व्यक्ति के गुण थे, कोई बहुत सौम्य था, कोई बहुत ज्यादा बोलता था, कोई कम बोलता था, कोई ज्यादा हंसता था, कोई ज्यादा कम हंसता था, कोई थोड़ा हमेशा काटने वाली बातें करता था, कोई हमेशा बहुत सुंदर सुंदर मीठी मीठी बातें करता था। स्वभाव अलग का अलग, हर एक व्यक्ति का अलग अलग था, ग्वाल बालों का। कोई जिसमें ज्यादा जोश था, कोई ज्यादा नरम था, सबके अपने अपने गुणों के हिसाब से उन्होंने देखा। कोई भी बात, छोटी छोटी सी बात भी नहीं रह गई, बिल्कुल अच्छी तरह से कॉपी कर दिया। यावत विहार आदिकम, विहार जैसे वो करते थे, चलते चलते कोई लड़का जो है कूदना पसंद करता था, एक तरह से कूदता तो एक तरह से घूमता, किसी और को पत्थर फेंकना, फल फेंकना, वृक्ष पर चढ़ के फल निकालना वो पसंद था, किसी और को वो नहीं पसंद, कोई और कार्य पसंद था। तो हर एक बालक को क्या पसंद था, किस तरह का विहार करता था, सब कुछ कृष्ण ने कॉपी कर दिया। कोई आसान बात नहीं है, कल्पना कीजिए किसी आदमी को आपको कॉपी करना है, क्या आसान बात है? भले आपने उसके चेहरे भी जैसे हैं वैसे बना लिए, लेकिन फिर भी जब आप बात करेंगे, आप व्यवहार करेंगे, तब तो पोल खुल जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा कि आप तो वो व्यक्ति नहीं है। कृष्ण भगवान ऐसे कई बार कॉपी किया करते थे, किसी न किसी दूसरे ग्वाल बाल का नकल करते थे, वैसे का वैसे वेश बनाकर जाते थे। जैसे कि एक बार कृष्ण भगवान राधा रानी को मिलना चाहते थे, तो वो गए, और आपको मालूम है कि राधा रानी के घर में तो सख्त मनाई थी, कृष्ण का नाम तक लेना वहां अलाउ नहीं था, अनुमति नहीं थी। तो इसीलिए जब कृष्ण भगवान आए तो सोचे कैसे राधा रानी से मिला जाए। तो राधा रानी के पति का नाम था अभिमन्यु। अब ये तो लीला है, वास्तव में कृष्ण ही सारे गोपियों के पति थे, लेकिन लीला के रस को बढ़ाने के लिए, परकीय रस को बढ़ाने के लिए, तो कृष्ण भगवान ने अपने आप को अभिमन्यु बना दिया, बिल्कुल अभिमन्यु जैसे दिखने में, बोलने में, सब कुछ। भगवान के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है ना। और वो इंतजार कर रहे थे, जब अभिमन्यु घर से निकलकर कोई काम से बाहर गए तो उस समय जल्दी से कृष्ण भगवान आए। तो पौर्णमासी ने देखा, जटिला ने देखा, जो कि राधा रानी की माँ है, और कुटिला जो कि अभिमन्यु की बहन, जटिला और कुटिला दोनों उनका नाम, उन्होंने देखा कि अभिमन्यु आ गए, ठीक है, जैसे अभिमन्यु की तरफ बात कर रहे थे। फिर सीधा अंदर जाके मिले राधा रानी से, और थोड़ी देर बाद असली अभिमन्यु वापस आ गए। तो जटिला कुटिला खड़ी थी, हाँ ये देखो कृष्ण ने कुछ, कृष्ण की ये हरकत है, कृष्ण ने अभी अभिमन्यु का वेश पहन कर आया, तो डंडा लेकर पीटने लगे। अरे अभिमन्यु कह रहे, अरे मैं तो अभिमन्यु हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा बच्चा हूँ, क्या कर रहे हो? और उधर अंदर कृष्ण भगवान आराम से मजा कर रहे हैं, आराम से हंस रहे हैं ये सब देखकर, ये देखो अभिमन्यु की पिटाई हो रही है। तो ऐसे कई बार कृष्ण अपने आप को विस्तार करके किसी दूसरे का नकल करते थे। आज तो कृष्ण भगवान को उस इच्छा पूरे करने का पूरा पूरा मौका मिल गया, एक को नहीं, दो को नहीं, हजारों का नकल कर दिया उन्होंने, और ऐसे नकल किया को किसी को पता नहीं चला, यहां तक कि बलराम जी को भी पता नहीं चला। तो कृष्ण भगवान की शक्ति सर्वव्यापी है, कृष्ण भगवान सब कुछ कर सकते हैं अपने शक्तियों के द्वारा, उनके लिए क्या असंभव है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहां कहते हैं कि इसलिए सर्वम विष्णुमयम जगत, तो भगवान के लिए, कृष्ण के लिए क्या मुश्किल है? भगवान अपने सारे सृष्टि में, जगत में अपने शक्ति के माध्यम से छाए हुए हैं, सर्वव्यापी है, उनके लिए कोई ये बातें कठिन नहीं है। और फिर ऐसे अपने आप को ग्वाल बालों के रूप में और वत्सों के रूप में विस्तारित करके भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? जैसे पहले का कार्यक्रम था, रोज का कार्यक्रम हुआ करता था, डेली प्रोग्राम जो हुआ करता था, वैसा का वैसे जारी रखा। मानो कि कुछ हुआ ही नहीं, कोई रुकावट नहीं आई। मान लीजिए हमको यात्रा में गए या नरसिंह क्षेत्र में गए, हलसी या कहीं और गए, बस में भर के लोगों को, एक भी हमारे भक्त कहीं गायब हो गया तो हम क्या करते हैं? हाहाकार, बारे कहां गया, ढूंढने जाते हैं सब जगह इधर उधर, और हमें मालूम नहीं पड़ता कहां गए हैं, और फिर सारा हमारा रिटर्न जो है वो फिर पोस्टपोन हो जाता है, हमको रुकना पड़ता है, बस देर हो जाती है, सब भक्त लोग चिल्लाने लगते हैं कहां गए ये भक्त। लेकिन कृष्ण के लिए ऐसे कोई परेशानी नहीं हुई, कृष्ण को पता चला क्या हुआ है, केवल उस भक्त के रूप में अपने आप को विस्तार कर लिया। जो कार्यक्रम है टाइम टू टाइम जैसे चलना है वो चलते रहा, भगवान ने अपने कार्यक्रम को डिस्टर्ब होने नहीं दिया। जो रोज का कार्यक्रम जैसे वैसे पहले करा करते थे, रोज जैसे ग्वाल बालों को ले जाते थे, अगर वत्स कहीं इधर उधर जा रहे हैं तो उनको ले आना, ग्वाल बालों को बताना कि देखो ऐसे करो ऐसे मत करो, जैसा रोज का कार्यक्रम था वैसे का वैसा उछल रहा था। और जैसे शाम का समय हो गया, जैसे ही सूरज अस्त होने वाला था, वैसे वैसे कृष्ण भगवान ने कहा ग्वाल बालों से, अर्थात अपने आप से, ग्वाल बाल तो वही थे ना, कहा कि चलो गौ अभी वत्सों को एकत्र करते हैं और वापस वृंदावन जाते हैं। तो सारे ग्वाल बालों ने वत्सों को एकत्र किया और वृंदावन की ओर निकल पड़े। तो इस समय क्या दृश्य था वहां? वहां पर श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ, जो कि कृष्ण ही हैं, अपने वत्सों को, जो भी वो कृष्ण हैं, सब साथ में लेकर चल रहे थे। इसलिए शुकदेव गोस्वामी यहां क्या कहते हैं? स्वयं आत्मात्म गोवत्सान प्रतिवर्यात्मा वत्सपये ही। स्वयं आत्मा अर्थात कृष्ण, स्वयं जो परमात्मा है, आत्म गोवत्सान, गोवत्सों को साथ में लेकर, जो कि आत्मा स्वयं वही थे, प्रतिवर्य आत्मवत्सपये अपने वत्सों, वत्स पालकों, मित्रों के संग, जो भी वही कृष्ण थे, क्या करने लगे? क्रीडन आत्मविहारश्च, विहार करने लगे। अर्थात कृष्ण ग्वाल बालों के संग और वत्सों के संग फिर से क्रीड़ा करने लगे, चलते चलते वापस। दूसरे शब्दों में कृष्ण अपने साथ ही लीला कर रहे थे, क्योंकि ग्वाल बाल भी वही थे और वत्स भी वही थे। इसलिए यहां क्रीडन आत्मविहारश्च, कृष्ण अपने आप के साथ में मजा ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। ये सुंदर अवस्था है। तो इस तरह से कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे, बड़े मोहक मनोरम स्वर थे उनके बांसुरी के ध्वनि का, और ग्वाल बाल जब ये सुनते थे तो अपने आप को रोक नहीं पाते थे, तो सुंदर सुंदर नृत्य करते थे, और नृत्य करते करते झूमते नाचते हंसते हंसाते वो वृंदावन की ओर चलते चल पड़े। और ध्यान भी रहता था कि वत्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कोई वत्स जाता तो लेकर आते। और जैसे जैसे वत्स झूमते जाते थे, इतने आनंद का वातावरण था कि आचार्य बताते हैं कि माता पृथ्वी जो है, ग्वाल बालों के स्पर्श से वो भी आनंद से प्रफुल्लित हो जाती थी। इस तरह से ग्वाल बाल अपने अपने बांसुरी बाजे वगैरह बजाते हुए वृंदावन की ओर आए। सर्वात्मा प्राविशत व्रजम। तो सारे ग्वाल बालों ने, सारे वत्सों ने और कृष्ण ने व्रज में प्रवेश किया, हर दिन की तरह, मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है। और आगे प्रवेश करने के पश्चात क्या हुआ, यहां पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। तत्तद् वत्सान् पृथन् नीत्वा तत्तद् गोष्ठे निवेश्य सः तत्तद् आत्मा भवद्राजन् तत्तद् सद्म प्रविष्टवान्। अब देखिए, कृष्ण भगवान जब अपने आप को ऐसे विस्तारित करते हैं तो अपने अंतरंग शक्ति का प्रयोग करते हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति अस्माद। राधा रानी कौन है? स्वयं कृष्ण है। अभी थोड़े दिनों में राधा रानी के बारे में सुनने वाले हैं, राधाष्टमी थोड़े दिनों बाद ही आने वाली है। तो राधा रानी कौन है? वो कृष्ण ही है, केवल उनकी लादिनी शक्ति के स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। लादिनी शक्ति मतलब उनकी वो अंतरंगा शक्ति जिससे उन्हें दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये सारे जो ग्वाल बाल थे और वत्स थे, ये वास्तव में श्री कृष्ण की लादिनी शक्ति से उत्पन्न हुए थे। इसलिए आप सोच सकते हैं कि कितना आनंद वहां था। तो कृष्ण अपने आप से ही आनंद का आदान प्रदान कर रहे थे और ऐसी अवस्था में वो ब्रज में आए और ब्रज में चल के क्या हुआ? तत्तत् वत्सान प्रथान नीतवा तत्तत् गोष्ठे निवेशय। हरेक जो गोष्ठ थे, मतलब उनके जो हरेक ग्वालबाल के पास कितने सारे वत्स थे, तो हरेक ग्वालबाल ने अपने अपने वत्सों को लेकर उनके उनके गोष्ठों में प्रवेश किया। जिस तरह से ग्वालबालों के अलग अलग घर थे, उस तरह से वत्सों के भी अलग अलग गोष्ठ थे। तो हरेक ग्वालबाल ने अलग अलग वत्सों को लेकर अपने अपने गोष्ठ में प्रवेश किया। अर्थात कृष्ण कृष्ण को गोष्ठ में ले जा रहे थे अलग अलग रूपों में, और फिर वत्सों को अपने अपने गोष्ठों में पहुंचाकर सारे ग्वाल बाल अर्थात कृष्ण अपने अपने घर में प्रवेश कर लिए। तो सारे जो ग्वाल बाल थे वो कृष्ण थे, इसलिए कृष्ण ही ने श्रीदामा का रूप लेकर श्रीदामा के घर में गए, कृष्ण ही सुबल बनकर सुबल के घर में गए, कृष्ण ही मधुमंगल का रूप लेकर मधुमंगल के घर में गए। और इस तरह से यहां सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, तत्तत् सद्म प्रविष्टवान, अपने अपने सद्म, सद्म अर्थात घर, अपने अपने घरों में सब प्रवेश किए। इस तरह से सारे जो गोप थे वो कि कृष्ण थे, वो सारे वत्सों को जो भी कृष्ण थे अपने अपने घर में गए, और इस तरह से कृष्ण ने सभी जगह प्रवेश किया। व्रज में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां कृष्ण ने प्रवेश नहीं किया। तो ये है जादू, कल्पना कीजिए व्रज में क्या दशा हुई होगी। कृष्ण ही कृष्ण सब जगह, वैसे भी व्रज कृष्णमय है, और अभी तो वास्तव में कृष्ण सब जगह छा गए, फैल गए, और वहां जाकर क्या हुआ? पहले सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं ग्वाल बालों के घरों का, कि घरों में क्या परिस्थिति हुई, उनकी माताओं की क्या परिस्थिति थी। सुंदर वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्थिता उत्थाप्य दोर्भी परिरभ्य निर्भरम स्नेह स्नुतस्तन्यपय सुदासवम मत्वा परम ब्रह्म सुतान पाययन। तन उनके, किनके? वत्सों के। मातरन उनके माताएं, उनका माताएं जो है अपने अपने घरों में थी। वेणु रव, वेणु की आवाज सुनी, क्योंकि ग्वालबाल और कृष्ण जैसे जैसे आ रहे थे घर में, रोज जैसे कार्यक्रम हुआ करता था, अपने अपने बांसुरी और बाजा बजाया करते थे, तो उसको सुन लिया। अभी बच्चे भी अपने अपने घर में आते हैं, आप सब जानते हैं, स्कूल से जब लौट कर आते हैं तो अपने अपने आवाज चिल्लाकर हंस के बोलकर घोषणा करते हैं दूर से कि मैं आ गया। या जब बच्चे कोई मेले में जाते हैं तो मेले से आकर क्या क्या करते हैं, वो सर में कोई टोपी पहन लिए, कोई ऐसे पहाड़ जैसे टोपी है, फिर एक बाजा है, वो बाहर आता है अंदर आता है, वो पू पू करके बजाते हुए आते हैं। और जब स्कूल से बच्चे आते हैं या ऐसे मेले से आते हैं, तो ठीक उसी तरह से ये बच्चे अपने दैनिक कार्य से आ रहे थे। उनको तो स्कूल नहीं था, और जहां तक मेला का सवाल है, ये तो रोज का मेला था उनके लिए, रोज कृष्ण के संग में जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, जंगल में खाते थे, फीस्ट होता था रोज उनके लिए, तो दावत होती थी तो उनके लिए रोज मेला था। तो जब आते थे तो हंगामा मच जाता था सारे ब्रज में, सारे ग्वाल बाल बांसुरी बजाते हुए, बाजा बजाते हुए। कल्पना कीजिए अपने मन में कि ब्रज में क्या दशा होती थी उस समय। सारे हजारों की संख्या में ग्वाल बाल अपने अपने घर में जा रहे हैं और सब बांसुरी बजा रहे हैं, बोल रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, तो हल्ला गुल्ला मच जाता था ब्रज में। सारी गोपियां देखने को आ जाती थी। तो इस समय जब ये सारे ग्वाल बाल जो कि कृष्ण थे वापस आ गए, तो माताओं ने वेणु रव वेणु की ध्वनि सुन ली और सुनकर क्या किया, त्वर उत्थित, त्वर मतलब त्वरित, तुरंत उत्थित उठ गए। गर्ग संहिता में बताया जाता है कि कई माताएं इनमें से आनंद से, क्योंकि बच्चों की प्रतीक्षा लंबे समय से कर रहे थे और जब पता चल गया कि बच्चे आ गए हैं, इतना आनंद हुआ कि बेहोश हो गए और बेहोश तुरंत फिर होश आ गया, खड़े हो गए, त्वर उत्थिता। और हर एक माता महिला जो है अपने अपने घर में खाली तो नहीं बैठी थी, उस जमाने में टीवी नहीं था कि लोग खाली बैठकर टीवी देखें, वहां बहुत काम हुआ करते थे ब्रज में भी, जैसे हमेशा मक्खन बनाना, कृष्ण के लिए कोई ना कोई दूध उबालना, कोई मिठाइयां बनाना, अपने कार्यों को छोड़ दिया और उठा पे बच्चों को उठाया, दौर भी अपने गोदी में अपने हाथों में, अपने हाथों से उठाया, परिरभ्य और आलिंगन किया, निर्भरम इस तरह से उठाया मानो कि इनका कोई वजन ही नहीं, कोई भार ही नहीं, बहुत जल्दी से उठा लिया और आलिंगन करके उनको अपने गोदी में रख दिया। और फिर स्नेह स्नुत स्तन्य पय सुधासवम, फिर स्तनपान कराना आरंभ किया और उनके स्तनों से दूध बह रहा था क्योंकि इतना प्रेम था। और उस समय इन ग्वाल बालों ने अर्थात कृष्ण ने मत्वा उस दूध को स्वीकार किया। कैसे स्वीकार किया, सुधा आसवम, जैसे कोई एक अमृतमय पेय है, बहुत स्वादिष्ट और मीठा मधुर लगा कृष्ण भगवान को अर्थात ग्वाल बालों को। और फिर वो स्तनपान करने लगे। इस तरह से उन्होंने सुतान अपायन, अपने सुतान मतलब अपने बच्चों को, अपायन मतलब पिलाया, दूध पिलाया, अर्थात किसको पिलाया, कृष्ण को पिलाया, परम ब्रह्म पर ब्रह्म श्री कृष्ण को पिलाया। तो देखिए कितनी सुंदर बात है ये। सारे ये जो वरिष्ठ गोपियां थीं, वो कृष्ण को बहुत चाहती थीं। और हालांकि वो जानते थे कि कृष्ण माता यशोदा का पुत्र है, फिर भी मन ही मन में उनकी हमेशा ये इच्छा होती थी कि अगर कृष्ण मेरा बच्चा होता तो मैं भी कृष्ण का उसी तरह से देखभाल करती जैसे कि माता यशोदा देखभाल कर रही है। तो सारे गोपियां जो हैं वरिष्ठ जो थीं, वो कृष्ण की माता बनना चाहती थीं। तो कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी हैं, सबकी इच्छा को जानते हैं, तो वो लंबे समय से सोच रहे थे कि कैसे इस इच्छा की पूर्ति की जाए। तो आज मौका मिला, इसलिए ब्रह्मा जी को धन्यवाद देना चाहिए था गोपियों ने। इसलिए भगवान जो भी लीला करते हैं ना, उसमें अनेक कार्य संपन्न हो जाते हैं, अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। तो माताओं की बहुत लंबे समय से जो इच्छा थी वो आज पूरी हुई, क्योंकि वो उन्होंने कृष्ण को ही अपने पुत्र के रूप में पाया और हृदय भर के उनको कृष्ण भगवान को दूध पिलाया। ये इनकी अंदरूनी इच्छा थी जो कि आज चल के कृष्ण भगवान ने पूरा कर दिया। अभी बलि महाराज के सामने जब वामन देव आए थे तो उनकी बहन वहां थी, एक जगह बहन बताया है, दूसरे शास्त्र में पुत्री बताया है, खैर जो भी है, उनका नाम था रत्नमाला। तो रत्नमाला ने जब पहले वामन देव को देखा जो कि बटु रूप में आए थे, बटु ब्रह्मचारी, ब्राह्मण ब्रह्मचारी, इतने सुंदर थे वामन देव कि रत्नमाला के हृदय में मातृत्व भावना जागृत हो गई और सोचने लगी कि काश मैं ऐसे बच्चे की माँ हो सकती, इसकी माँ ही हो सकती और काश मैं इसको दूध पिला सकती। तो ये भावना तो थी हृदय में, भगवान ने जान लिया कि रत्नमाला ऐसे सोच रही है। लेकिन जब वामन देव का विराट रूप देखा और जब ये देख लिया कि मेरे भाई का सब कुछ हरण कर लिया है इस वामन देव ने, इस बटु ब्रह्मचारी ने, ये तो धोखेबाजी थी जो इस ब्रह्मचारी ने की, तो उस समय रत्नमाला के हृदय में तुरंत द्वेष भावना आ गई कि अरे हमसे सब कुछ छीन लिया, हमसे धोखेबाजी की इस बटु ब्रह्मचारी ने, तो मैं इसको विष पिलाना चाहती हूँ, इसको मार देना चाहती हूँ। शक्ति तो नहीं थी ऐसा करने के लिए, लेकिन इच्छा करने के लिए कौन रोक सकता है, इच्छा करने के कुछ भी कर सकते हैं। तो रत्नमाला ऐसी सोच रही थी, लेकिन कृष्ण के सामने, भगवान के सामने कर रही थी, इसलिए भगवान को पूरा करना पड़ा। इसलिए सब भक्तों के लिए सावधानी है, मंदिर में आते हैं तो सावधानी से इच्छा रखिए, इच्छा कीजिए अपने मन में, क्योंकि जो इच्छाएं आएंगे ये खतरा है कि वो पूरा हो जाए, भगवान पूरे कर देंगे, और पूरी करने के बाद जो दशा होगी हमारे फिर वो दूसरी बात। पूरा तो कर देंगे क्योंकि भगवान तो चिंतामणि की तरह है। कोई आके यहां प्रार्थना करे कि हे भगवान काश मेरे पास 10 लाख रुपए हो जाते, खबरदार भगवान दे भी देंगे, और एक बार 10 लाख आ गए तो फिर खबरदार, फिर जो बाद में होगा उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। तो इस तरह से रत्नमाला ने इच्छा तो कर दी कि मुझे विष पिलाना है, रत्नमाला ने यह भी इच्छा की थी मुझे स्तनपान कराना है, दूध पिलाना है। तो भगवान ने सोचा इन दोनों इच्छाओं को पूरी करना है, अब ये तो बड़ी मुसीबत है। लेकिन आखिर भगवान के लिए क्या मुसीबत है, क्या कार्य कठिन है? तो अगले जन्म में रत्नमाला को क्या बनाया, पूतना बना दिया। तो पूतना भी आई सुंदर रूप धारण करके, स्वर्गलोक की एक महिला जैसे, कन्या जैसे, इतनी सुंदर कि यशोदा मैया और सारे जो गोपियां थी उनको समझ में नहीं आया कि यह कहां से आई है। बिल्कुल रोका भी नहीं, मुंह से एक शब्द नहीं निकला, हृदय में ये इच्छा भी नहीं हुई कि उनको पूछें कि तुम कौन हो, क्यों आई हो, कहां से आई हो, बिल्कुल खतरा महसूस नहीं किया। इतना सुंदर स्वभाव था, बात करने का ढंग, केवल अचरज हो गया, भौचक के रह गए, वो देखते रह गए कि ये कौन है। बस अंदर आई पूतना, तुरंत बच्चे को कृष्ण, बाल कृष्ण को उठाया, गोदी में रखा, स्तनपान करना आरंभ कर दिया, और भगवान ने स्तनपान किया, बड़े हृदय से स्तनपान किया, दूध का पान किया, लेकिन साथ साथ प्राण का भी पान कर लिया, प्राण खींच लिए, और उस समय पूतना बाहर निकल पड़ी चीखते चीखते, और अपने असुर रूप, अपने राक्षसी रूप को प्रकट कराया। उस सुंदर अप्सरा का रूप रख नहीं पाई, और फिर अपना 8 मील लंबा रूप, उग्र रूप धारण हो गया, और फिर कृष्ण भगवान ने प्राण छीन कर पूतना का वध कर दिया। और अंत में पूतना कहां गई, धात्री का रूप मिला गोलोक वृंदावन में। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयाय पायत अप्य साध्वी, धात्री लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। उद्धव कहते हैं कृष्ण के कृपा के बारे में, कहते हैं कि अहो बकी यम स्तन कालकूटम, बकी मतलब पूतना, क्योंकि पूतना जो है वो बकासुर की बहन थी, और अघासुर और बकासुर भाई थे, और पूतना बहन थी उनकी, तो बकासुर की बहन है बकी, बका की बहन, बक की बहन बकी, तो इसलिए अहो बकी यन स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट नाम का भयंकर विष लगाकर आई थी, जिघाम सया बड़े द्वेष भावना लेकर, अप्य साधवी अश्रद्धालु, अपाययत कृष्ण को पिलाया, और पिलाने के बाद में क्या स्थान मिला, लेभे गतिम धात्री, गति कौन सी मिली, धात्री का, धात्री मतलब जो बच्चे को, बच्चे का देखभाल करता है, माँ के समान होती है धात्री, कभी कभी धात्री दूध भी पिलाती है बच्चे को। तो धात्री का स्थान, माता यशोदा के एक दासी का स्थान मिला, माता यशोदा के कोई सहेली का स्थान मिल गया, गोलोक वृंदावन में, जो उस व्यक्ति को जो कि विष पिलाने आई थी कृष्ण भगवान को। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक द्वेषी अश्रद्धालु व्यक्ति जैसे पूतना, जो कि भगवान को मारने की इच्छा से आई है, उसको स्तनपान कराने के बाद में जब गोलोक वृंदावन में धात्री की गति प्राप्त हो जाती है, तो ऐसे जो गोपियां हैं जो कि इतने स्नेह से कृष्ण को पिला रही थी दूध, तो उनकी भले गति क्या हुई होगी, उनका सौभाग्य कितना था, समझ लीजिए। तो इसलिए आज उनकी अंदरूनी इच्छा जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने पूरी कर दी, और इस तरह से गोपियां बड़े आनंद में भगवान श्री कृष्ण से आदान प्रदान कर रही थी प्रेम का। और उधर भगवान श्री कृष्ण एक और ब्रह्मा जी को और भी ज्यादा मोहित करते जा रहे थे, और दूसरे उधर दूसरी जगह यहाँ वृंदावन में अपने माताओं के संग में सुंदर इस प्रेम में आनंद का मजा लूट रहे थे। तो आगे परीक्षित महाराज सुखदेव महाराज ये वर्णन कर रहे हैं कि जब ग्वाल बालों ने अपने घरों में प्रवेश किया, पहले माताएं बाहर आईं, बच्चों को उठाया, आलिंगन किया इत्यादि, फिर घर में अंदर ले गईं। तो घर में अंदर ले जाने के बाद में क्या हुआ, ये वर्णन सुखदेव गोस्वामी अब करने जा रहे हैं। ततो नृपोन्मर्दनमज्जलेपना लंकार रक्षा तिलकाशनादिभिः संलालितः स्वाचरिते प्रहर्षयन् सायं गतो यामयमेन माधवः। ततः उसके बाद में नृपन, हे राजा परीक्षित, क्या हुआ, माताओं ने बच्चों को लिया साथ में, उन मर्दन मतलब तेल का मालिश किया, क्योंकि थके हुए थे, सारा दिन भर बाहर घूमे फिरे थे, तो तेल का मालिश करने लगे। उसके बाद क्या करने लगे, मज्ज मतलब उनको नहलाया। जैसे ये प्रथा हुआ करती थी कि पहले तेल का मालिश, खास करके बच्चों को तेल का मालिश करके फिर स्नान करना, आजकल तो ये अभी सब प्रथा है ये टूट चुकी है, आजकल कोई नहीं तेल का मालिश करके स्नान करते। स्नान करना बहुत बड़ी बात है आजकल, तो तेल का मालिश करके स्नान करना ये तो बहुत दूर की बात हो गई है ना। तो फिर स्नान कराने के बाद में क्या करती थी, सजाती थी। कैसे सजाती थी, सबसे पहले लेपन करती थी तेल और चंदन का मिश्रण, फिर सारे शरीर पर लेप लगाती थी, उसके बाद में उनको कपड़े पहनाती थी, और कपड़े पहनाने के बाद में अलंकार आभूषण इत्यादि, और उसके बाद में रक्षा, अलंकार रक्षा, रक्षा मतलब उन बच्चों की रक्षा के लिए नाना प्रकार के मंत्र स्तोत्र इत्यादि बोलते, नारायण की स्तुति करते कि हे नारायण हमारे बच्चे को बचाओ, हमें रक्षा करो इसकी। जब पूतना का वध हुआ और जब गोप गोपियां दौड़कर, गोप तो नहीं थे वो तो वन में गायों को चराने गए थे, लेकिन गोपियां जो थी वो दौड़कर बाहर गई देखने को कि क्या हो गया, इतना तमाशा क्या हो रहा है। और उस समय उन्होंने क्या देखा, इतना अद्भुत दृश्य देखा कि बाल कृष्ण उस विशाल पहाड़ जैसे स्तन पर वहां पे विहार कर रहे हैं। तुरंत सारे गोपियों ने ऊपर चढ़ के कृष्ण भगवान को वो सब नीचे ले आए, और नीचे ले आकर माता यशोदा सोच रही थी कि साक्षात नारायण ने ही कृष्ण को बचाया। वो ये नहीं जानती थी कि नारायण के उगम स्थान भी यही बालक है, नारायण की कृष्ण की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उल्टा कृष्ण ही सभी की रक्षा कर रहे हैं। तो इस तरह से क्षमा कीजिए, थोड़ा अर्जेंट बात था। तो इस तरह से हम क्या कह रहे थे, हाँ, वो सोच रहे थे कि बालक जो है ये अभी खतरा है इसको, तो क्या करने लगे, रक्षा के मंत्र, मंत्रों का उच्चारण करने लगे। तो गोबर और गौमूत्र लिया, गौमूत्र से स्नान कराया। आजकल गौमूत्र के दो बूंद लेने के लिए सब नाक बंद करते हैं, ये करते हैं, चेहरा उनका यूं हो जाता है, कैसे लेना, क्या लेना, कैसे लेंगे, हम तो मॉडर्न लोग हैं, ये गौमूत्र कैसे लेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का स्वयं स्नान कराया गौमूत्र से, और गोबर, आजकल गोबर का नाम लेते तो छी 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 हो जाता है, लेकिन वहां गोबर का लेप लगाया भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने, और गोबर से तिलक लगाया, जैसे हम तिलक लगाते हैं 12 जगह में, तो वहां माता यशोदा ने भी कृष्ण भगवान के ऊपर गोबर का तिलक लगाया। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ओम केशवाय, कृष्ण के उदर की रक्षा करो। ओम माधवाय नमः, कृष्ण की छाती का रक्षण करो। ओम गोविंदाय नमः, कृष्ण के ललाट का रक्षण करो। ओम विष्णुवे नमः, कृष्ण के कमर का रक्षण, दाहिनी ओर कमर का रक्षण करो। इस तरह से गोबर और गौमूत्र से फिर लेप लगाया और ऐसे रक्षण के मंत्र, संरक्षण के मंत्र बोलने लगी। साथ साथ जो है चामर का भी प्रयोग करती थी माता यशोदा उनको संरक्षण करने के लिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं ये है वैदिक संस्कृति, ये है वैदिक सभ्यता। साधारण वृंदावन के जो गांव की माताएं थी, गोपियां थी, वो जानती थी कि किस तरह से बच्चों का संरक्षण गोबर, गौमूत्र और गाय के पदार्थों से करना चाहिए, समझती थी। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि शोक की बात है कि आजकल महिलाएं ये सब नहीं जानती हैं, कोई नहीं जानता कैसे संरक्षण करना चाहिए, ये बहुत शोक की बात है। तो खैर इस तरह से सारे माताओं ने भी ग्वाल बालों के लिए ऐसे किया, सुरक्षा तिलक लगाया, अशनाद भी, अर्थात बहुत ही पेट भर के उनको स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए सारे ग्वाल बालों को। और फिर समलालितः मतलब इस तरह से माताओं ने बच्चों का देखभाल किया। अभी देखिए ये शब्द बहुत सुंदर है, समलालितः, लालितः, लालित मचब मतलब लाड़ प्यार करना, लल धातु से आता है, लल मतलब लाड़ प्यार। तो लल धातु से कई प्रकार के शब्द आते हैं संस्कृत में, जैसे कि लालन, ललना, ललना को स्त्री को ललना कहते हैं, लालित या ललित, ललिता, ये सारे शब्द जो हैं लल धातु से आते हैं। लल धातु मतलब जो लाड़ प्यार किया जाता है, तो उसी लाड़ प्यार से लालितः माताओं ने प्रेम किया इन बच्चों को। लेकिन केवल लालित नहीं, केवल लालन पालन नहीं, कैसे लालन पालन किया, समलालितः, समलालितः मतलब संपूर्ण, सम्यक, सम्यक लालितः। ये सम जो शब्द आता है, जैसे कि संकीर्तन, हम केवल कीर्तन नहीं कहते, जब कीर्तन करते हैं संपूर्ण सम्यक कीर्तन, जो परिपूर्ण कीर्तन होता है उसको संकीर्तन कहते हैं, जो संग में भक्तों के किया जाता है वो परिपूर्ण कीर्तन होता है। इसलिए सम शब्द का प्रयोग किसी शब्द के पहले किया जाता है, इसको इसका ये मतलब होता है कि वो बहुत परिपूर्ण संपूर्ण है। तो इस तरह से माता यशोदा और अन्य जो माताएं हैं उन्होंने ग्वाल बालों के अर्थात कृष्ण का लालन पालन, लाड़ प्यार कैसे किया, संपूर्ण तरह से किया, स्वतः उन्होंने किया। ऐसा नहीं कि किसी दासी को कह दिया, नौकरानी को कह दिया, अरे देखो खिलाओ पिलाओ, उसे स्नान करा दो, नहीं, खुद अपने हाथों से सब कुछ किया। तो ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। तो जिस तरह से माताओं ने कृष्ण का लाड़ प्यार किया, सजाया, उनको स्नान कराया, उसी तरह से हम भी जब भगवान के अर्चा विग्रह का श्रृंगार करते हैं, सेवा करते हैं, उसी लाड़ प्यार से, प्रेम से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के अर्चा विग्रह में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। तो हमें यह भावना रहनी चाहिए कि जब हम श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं, आभूषण लगा रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भोग चढ़ा रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, तो उसी लाड उसी प्रेम की भावना से हमें करना चाहिए। समलालितः, तो ये एक उपदेश हमारे लिए है कि किस तरह से ब्रजवासी गण ऐसे सोचा करते थे, प्रेम करते थे। स्व आचरित ही प्रहर्षयन, और फिर जो ग्वाल बाल हैं वो अपने अपने कार्यों से, अपने अपने आचरण से प्रहर्षयन माताओं को बहुत प्रसन्न करते थे। माताएं जो है आनंद के सागर में डूब जाती थी ऐसे अपने अपने बच्चों का लाड़ प्यार करने से। और आज तो लाड़ प्यार का क्या कहने, क्योंकि स्वयं कृष्ण थे, उनके बच्चे के रूप में आए थे, माताओं को पता नहीं था कि ये कृष्ण जो है अपना ही, ये बच्चे जो है कृष्ण है। सायं गतो याम यमेन माधवः, और इस तरह से शाम के समय जब कृष्ण आए थे और सारे ग्वाल बाल आए, तो ये सब लीलाएं हर एक गोप गोपी के घर में चल रही थी। यहां शब्द का प्रयोजन है याम यमेन, मतलब ये क्रम से अपने अपने निजी जो दैनिक कार्यक्रम के अनुसार सब कुछ चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण जो भी लीला करते हैं वो भी कार्यक्रम होता है, उनका लीला का दैनिक कार्यक्रम होता है। ऐसा नहीं कि भगवान जब चाहे जो भी कुछ करें, बीच रात में ग्वालों को चराने ले जाएं और दिन के समय रासलीला करें, नहीं। हर एक लीला के लिए उचित समय उचित स्थान होता है, जैसे हमारे लिए भी हर एक कार्य के लिए उचित स्थान उचित जगह उचित समय। जैसे सोने के लिए भागवत क्लास नहीं होता, घर होता है, पलंग होता है, चटाई होती है ना। तो उस तरह से भगवान श्री कृष्ण भी जो अलग अलग लीलाएं करते थे, अलग उचित समय उचित स्थान। रास लीला तो हमेशा रात को हुआ करती थी, जब सब लोग सो जाते थे तो सारे कृष्ण और सारे गोपियां चुप चुप के बाहर आके फिर रासलीला होती थी। दिन के समय करने से क्या मजा, हो ही नहीं सकता रासलीला दिन के समय। सारे गोपियों के पति, उनके ससुर सास सब जगे हुए हैं, तो वो संभव नहीं। उसी तरह से गाय को चराना, वो तो दिन के समय होना चाहिए, अंधकार के बाद तो नहीं हो सकता। भगवान के धाम में ऐसे 24 घंटे इस तरह से उनका कार्यक्रम बिल्कुल अच्छे ढंग से चलता है। वहां भगवान के धाम में गोलोक वृंदावन में 24 घंटे का विभाजन 8 भागों में किया जाता है, 3-3 घंटे का, और हर एक इस 3 घंटे के भाग में एक अमुक तरह की लीला ही चलती है। उस लीला के भीतर विविधता होती है रोज, वो तो है, लेकिन लीला अमुक प्रकार की ही होती है। जैसे अमुक समय वो गोपियों को जाकर मिलते हैं, अमुक समय लील रास लीला करते हैं, अमुक समय प्रसाद ग्रहण करते हैं, अमुक समय माता यशोदा नंद महाराज के संग में रहते हैं। सब सिस्टम से चलता है, क्रम से चलता है। इसको अष्टकालीय लीला कहते हैं। तो गोलोक वृंदावन में जो लीला होती है अष्टकालीय, मतलब अष्ट विभाजन इन कालों के अनुसार। तो जब भगवान संयम के साथ चलते हैं, उनको हर एक कार्य करने का समय होता है, तो हमें भी अपना जीवन संयम से चलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी सोएं, कभी भी उठें, कभी भी खाएं, कभी भी पिएं, कभी भी कार्य करें, नहीं। हमें भी संयम के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी से स्नान करके भगवान की पवित्र नामों का जाप करने के लिए मंगल आरती या वगैरह अपने घर में भी हो या मंदिर में हो करना चाहिए। सुबह का समय अच्छा होता है जाप के लिए, तो सबको उठकर भगवान का नाम लेना चाहिए। तो भगवान ने अपने उदाहरण से सिखलाया है, केवल अब नहीं नित्य सिखाते रहते हैं, गोलोक धाम में भी वैसे ही करते रहते हैं। इसलिए यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सायं, जब सायं का समय आ गया तो घर लौटने का समय आ गया। जब 9:30 बज जाते हैं हमारे लिए, सोने का समय आ गया, सो जाना चाहिए। फिर और चाहे टीवी पे कौन सा भी प्रोग्राम हो, चाहे और भी कोई कार्य हो, नहीं, अभी सोने का समय, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है। याम यमेन माधवः, इस तरह से माधव श्री कृष्ण ने इस तरह की लीलाएं किए। उधर कृष्ण जब नंद महाराज के घर में प्रवेश किए, वहां क्या लाड़ प्यार हुआ उनका। कवि कर्णपुर आनंद वृंदावन चंपू में बताते हैं कि सबसे पहले नंद महाराज ने उनको उठाया और आलिंगन किया और कृष्ण की पगड़ी जो है वो उतार दी। पगड़ी उतार कर उसके बाल सूंघने लगे। प्रेम का एक लक्षण होता है कि माता पिता अपने बच्चों का बाल जो है सर सूंघते हैं। तो ये वृंदावन में ये अक्सर हुआ करता था। भागवत में कई बार इसका वर्णन आता है। तो पहले अपने बच्चे का बाल सूंघने लगे, अपना उनका सर, और ये सूंघते सूंघते इतना आनंद आ रहा था कि जैसे आनंद के सागर में वो तैर रहे थे। और फिर कृष्ण भगवान को चूमने लगे, लेकिन घबराए कि मेरी दाढ़ी वो लग रही है कृष्ण के मासूम चेहरे के ऊपर लग रही है। तो बचा बचा के दाढ़ी को बचा बचा के बाल कृष्ण को चूम रहे थे। और फिर कृष्ण ने माता यशोदा को देखा, और जैसे माता यशोदा को देखा तुरंत नंद महाराज की गोदी से कूद कर गए भागते हुए माता यशोदा के पास। उधर नंद महाराज को शोक हुआ, अरे मेरे हाथ से चले गए। फिर वहां रोने लग गए नंद महाराज जी, उनके आंखों से आंसू आए कि अभी कृष्ण हमारे हाथ से चले गए। फिर माता यशोदा की बारी, माता यशोदा ने लाड प्रार किया, उठाया। माता यशोदा का जो वात्सल्य प्रेम है उससे बढ़कर और किसका हो सकता है। वात्सल्य प्रेम की परिपूर्ण रूप है, मूर्तिमान रूप है माता यशोदा। इसलिए माता यशोदा ने फिर कृष्ण भगवान को नहलाया, धुलाया, सजाया और फिर खिलाया, चूमा, बहुत कुछ लाड़ प्यार किया। और इस तरह से माता यशोदा पूरी तरह से संतुष्ट हुई। और फिर कृष्ण भगवान को सुलाने का समय आ गया, तो अच्छी सी गद्दी थी, गद्दी में सुलाया। गद्दी कैसी थी? सफेद, जैसे दूध का फेन होता है वैसे सफेद। उस पर सुलाया, लोरी सुनाई और फिर चली आई। परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, नंदः किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एव च महोदयम् यशोदा च महाभागा स्तनम यस्यौ हरि पपौ। वो कहते हैं कि हे शुकदेव गोस्वामी, नंद महाराज किम अकरोद ब्रह्मन्, हे ब्राह्मण, हे शुकदेव गोस्वामी, नंद महाराज ने क्या कार्य भले किए होंगे, श्रेय, कौन से बड़े बड़े पुण्य किए होंगे पिछले जन्मों में कि उनको कृष्ण भगवान पुत्र के रूप में मिला। यशोदा च महाभागा, ये अति भाग्यशाली माता यशोदा, उसने भी कौन सी तपस्या, कौन से पुण्य किए होंगे पिछले जन्मों में। पपौ यस्या स्तनम हरि ही, कि स्वयं श्री हरि श्री कृष्ण ने उनका स्तनपान किया। तो ये है माता यशोदा और नंद महाराज का स्थान। कौन समझ सकता है इनके सौभाग्य को। नैनम विरिंचो न भवो न श्रीर अपि अंग संश्रया प्रसाद ले भिरे गोपी। जो भव या शिवजी, विरिंचो ब्रह्मा जी, श्री अर्थात लक्ष्मी जी, जो कि अंग संश्रया विष्णु जी के वक्षस्थल पर निवास करती हैं, जो प्रसाद, जो कृपा उनको नहीं मिला, प्रसाद ले भिरे गोपी, वही कृपा जो ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी को नहीं मिला वो माता यशोदा को मिला। क्योंकि इनका इतना तीव्र प्रेम था, वात्सल्य भाव था भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तो इस तरह से जब कृष्ण भगवान और सारे ग्वाल बाल लौट कर आए तो इस तरह से उनका लाड़ प्यार हुआ ब्रज में। तो यहां ये हुई बात ग्वाल बालों की। उधर वत्सों का क्या हुआ? वत्स भी अपने अपने घर में गए, घर में मतलब गोष्ठ में, जहां उनकी माताएं उनका इंतजार कर रही थी। जिस तरह से ग्वाल बाल अपने अपने घर में गए और उनकी माताएं वहां थी, उसी तरह से वत्स भी अपने अपने गोष्ठों में गए जहां उनकी माताएं गौएं उनका इंतजार कर रही थी। और जिस तरह से ग्वाल बालों की माताओं ने उनका लाड प्यार किया, स्वागत किया, उसी तरह से गौओं ने अपने वत्सों का स्वागत किया और लाड प्यार किया। ये मातृत्व की भावना हर योनि में रहती है, चाहे बंदर हो, सुअर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, किसी भी योनि में आप देखेंगे, तो गौओं में भी है। तो जब वत्स वापस आए तो सारे गौएं जो थे पुकार रहे थे उनको। कैसे पुकार रहे थे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरम हुंकार घोषय परिहूत संगतन स्वकान स्वकान वत्सरान पाययन मुहुर्लिहंत्या श्रवदोध संपयः। गावस ततो गोष्ठम उपेत्य सत्वरम, गाय जो है वो अपने अपने गोष्ठों में चली गई, क्योंकि उस समय वत्स तो प्रवेश कर चुके थे गोष्ठों में। हुंकार घोषय परहूत संगतान, और हुंकार करने लगे, ऐसे आवाज करते हैं ना गौवे, उनके बुलाने का तरीका होता है तो बुलाने लगे अपने वत्सों को। तो सारे गौवे चल रहे हैं इधर उधर, कहां अपने अपने वत्स कहां है ढूंढने लगे, और जाकर क्या करने लगे, स्वकान स्वकान वत्सरान अपायन, अपने अपने वत्सों को दूध पिलाने लगे। अपायन मतलब पिलाना, ऐसे नहीं कि वो पहचान नहीं पाए अपने वत्स कौन से, सब एक जैसे दिखते हैं, नहीं। गौओं ने बराबर बिल्कुल अपने अपने वत्सों को पहचान लिया, जिस तरह से वत्स भी ठीक ठाक अपने अपने मां को पहचान सकते हैं। ये गाय की खूबी होती है, गाय के वत्स जो होते हैं अपने माताओं को पहचान सकते हैं। हजारों की संख्या में भी गाय हो तो ठीक जाकर अपने मां के पास ही जाएगी। जैसे मनुष्य जीवन में भी बच्चा होता है, ढूंढता ढूंढता जाएगा, कभी कभी मंदिर में संकीर्तन के समय प्रवचन के समय दिखाई पड़ता है, छोटा बच्चा ढूंढ रहा है अपनी माँ कहाँ है, और पहचानता अच्छी तरह से, भ्रमित नहीं होता कि इतनी माताएं हैं कौन हमारी माता है, सही तरह से पहचान लेता है। तो वत्सों की भी ये बुद्धि होती है, सही तरह से अपने माता के पास जाके पहुंच देते हैं। लेकिन भैंसों के साथ ऐसा नहीं होता है, भैंसों की बुद्धि थोड़ी कम होती है, इसलिए वो पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए जो लोग गाय का दूध पीते हैं बड़े हृष्ट पुष्ट होते ही शरीर से, बुद्धि से भी बड़े तेज हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन जो भैंस का दूध पीते हैं फिर वो भैंस के गुण भी उनके अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से जो गौए हैं उन्होंने दूध पिलाना शुरू कर दिया। और जिस तरह से मनुष्य जीवन में जब बच्चों का लाड़ प्यार करते हैं तो शरीर पे हाथ घुमाते हैं, चूमते हैं, सर सूंघते हैं, उसी तरह से गौएं कैसे वत्सों को का लाड़ प्यार करती थी, पिलाने के अलावा चाटते हैं उनको, चाटने लगे। आपने देखा होगा कि जब गाय को वात्सल्य प्रेम आ जाता है तो गौए को वत्स को चाटते रहते हैं। खास करके जब जन्म होता है, जन्म के तुरंत बाद ये बहुत आवश्यक है कि वत्स को गौए गाय के पास होना चाहिए, उसी क्षण, कभी भी दूर नहीं ले जाना चाहिए। तो जब वत्स वहां आ जाता है तो फिर गाय चाटना शुरू करती है, पूरा शरीर चाटेगी, बिल्कुल पूंछ से लेकर सर तक, हर एक पैर नाखून तक सब चाटती है, पूरा कोई भी हिस्सा छोड़ती नहीं है। तो ये है गाय का वात्सल्य प्रेम। तो ये सब हो रहा था प्रत्येक गोष्ठ में, गौशाला में अंदर ये घटना हो रही थी, ये दृश्य देखने में आ रहा था। तो इस तरह से जितने भाग्यशाली गोपियां थी वृंदावन की, जिन्होंने कि कृष्ण भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाया और उसको स्तनपान कराया, ठीक उसी तरह से ये गौएं भी कम भाग्यशाली नहीं थी। क्यों? क्योंकि जिन वत्सों को वो दूध पिला रहे थे वो कौन थे? कृष्ण ही तो थे। तो उनको भी कृष्ण को दूध पिलाने का मौका मिला, कृष्ण की मां बनने का मौका मिला। तो देखिए गोपियां और गौएं वृंदावन के साधारण नहीं है, कितने भाग्यशाली हैं कि उनको साक्षात कृष्ण को, परब्रह्म कृष्ण को मां के रूप में दूध पिलाने का मौका मिला। अब ये भाग्य गौओं का दूसरी बार हुआ, पहली बार कब हुआ कोई बता सकते हैं? पहली बार पहला अवसर कौन सा था कि गौए ने कृष्ण को दूध पिलाया डायरेक्ट? जब भगवान बाल लीला कर रहे थे, बाल लीला के समय जब वो इधर उधर मिट्टी पे चलते थे, अपने घुटनों पे चलते थे और फिर गोश्त में चले जाते थे और सीधे गायों के स्तन से उधर ही मुंह लगाकर पान कर लेते थे दूध का उधर ही, और कभी कभी वत्सों के पूंछ जो है पकड़ लेते थे, वत्स घबरा जाते थे और इधर उधर भागते थे, और जब वत्स घबरा कर भागते थे तो कृष्ण और बलराम दोनों घबरा जाते थे और वत्स की पूंछ को छोड़ते नहीं थे, और भी सख्ती से पकड़ लेते थे, और फिर वत्स जो है इधर उधर उनको लेकर घूमती फिरती थी गोबर में, गौमूत्र में, मिट्टी में, और गोपियां सब देखकर हंसने लग जाती और फिर कृष्ण बलराम को बचाने के लिए चली जाती और बचा देते कृष्ण भगवान को। ये है कृष्ण बलराम, जो कि सारे सृष्टि को बचाते हैं, सबको बचाते हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए वत्सों से गोपियों को दौड़ के आना पड़ता है। तो उस समय भी बाल लीला के समय भगवान श्री कृष्ण ने गौओं से डायरेक्ट दूध का पान किया था और ये दूसरा अवसर था। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वृंदावन के निवासी साधारण हैं, केवल गोप गोपियां नहीं, केवल गौवे नहीं, सारे प्राणी, घास के तिनके भी वहां वृंदावन के विशेष होते हैं। तो इस तरह से क्या गति इनकी भी प्राप्त, उनको भी प्राप्त हुई होगी, इन गौओं को, जब पूतना को ऐसे गति मिली थी तो इन गौ ये थोड़ी कम थोड़ी थे, इतना स्नेह था उनका और कृष्ण को इतना स्नेह से पिलाया दूध। तो ये है भाग्य। और इस तरह से आगे सुखदेव गोस्वामी एक बहुत और अद्भुत बात बता रहे हैं इस घटना के बारे में, और वो क्या अद्भुत बात है आइए सुनते हैं। गो गोपिना मात्रास्मिन् आसित स्नेहाधिकं विना पुरोवद आशपे हरे तोकता मायया विना। जो गो गोपिनाम मात्रास्मिन, जो गौवे मां बनी थी और जो गोपियां मां बनी थी, पहले भी उनको अपने हृदय में कृष्ण के पति प्रति मातृत्व प्रेम था पहले से, और वृंदावन की यह विशेषता थी कि गौवे और गोपियां दोनों कृष्ण भगवान को अपने पुत्रों से या वत्सों से ज्यादा प्रेम करते थे। यह वृंदावन की विशेषता। अब देखिए साधारणतः संसार में देखा जाता है कि माताएं जो होती हैं बच्चों की मां, वो सारे बच्चों से प्रेम करते हैं, पड़ोसी के बच्चे हों और रिश्तेदारों के बच्चे हों, लेकिन अपने बच्चे के प्रति जो है विशेष या अधिक स्नेह रहता है, ये तो स्वाभाविक है। सबसे प्रेम करते हैं लेकिन विशेष स्नेह अपने बच्चे के लिए रहता है। तो भेदभाव करते हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं, ये उनका बच्चा है, और ये मेरा बच्चा है तो स्नेह ज्यादा है। तो संसार में लोग अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन वृंदावन में क्या हुआ, क्या होता था कि सारे माताएं कृष्ण को, जो कि माता यशोदा का पुत्र था और किसी का पुत्र था, और किसी के पुत्र को अपने पुत्रों से ज्यादा प्रेम करते थे। ये आज तक का इतिहास था वृंदावन में, लेकिन आज परिस्थिति और भी बदल गई। कैसे बदल गई? क्योंकि गोपियां महसूस करने लगी कि पहले तो हम कृष्ण को अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करते थे, आज तो हमें लग रहा है कि हम हमारे बच्चों को उतना ही प्रेम कर रहे हैं जितना कि हम कृष्ण से करते थे। समझे आप बात? क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि बच्चे तो कृष्ण ही थे ना, लेकिन इस बात को गोपियां नहीं जानती थी, इसलिए उनके मन में भ्रम आ गया। जिस तरह से ब्रह्मा जी भ्रमित हुए, गोपियां भी भ्रमित हो गई, गौवे भी भ्रमित हो गई कि अरे क्या बात है, पहले तो केवल ये प्रेम की तीव्रता केवल कृष्ण के लिए थी, हमारे बच्चों के लिए भी नहीं थी, वत्सों के लिए भी नहीं थी, लेकिन आज हम लग रहा है कि ये प्रेम तो कोई विशेष ही है, असाधारण है। वो नहीं जानती थी कि वो कृष्ण से ही प्रेम कर रही हैं। और एक दूसरी विशेष बात है जो कि श्रील प्रभुपाद जी यहां समझा रहे हैं कि साधारणतः अपनी मां, जो मां अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम करती है दूसरे बच्चों की तुलना से, और वृंदावन में ऐसे हुआ करता था। जैसे श्रीदामा की मां पहले, सबसे पहले कृष्ण से ज्यादा प्रेम करती थी, दूसरा नंबर था श्रीदामा का और तीसरा बाकी ग्वाल बालों का, सही है ना? लेकिन आज क्या हुआ था, पहले नंबर पे कृष्ण भी थे और उनके बच्चे भी थे। लेकिन जो पहले तीसरे नंबर पे थे, दूसरे ग्वाल बाल, उनको तीसरे नंबर पे रहना चाहिए था ना, लेकिन वो भी पहले नंबर पर आ गए। अर्थात सुबल को, मधुमंगल को, भद्रसेन को, अन्य ग्वालों को भी वो उतना ही प्रेम करने लगे जितना कि वो कृष्ण से करते थे, और आज जो जितना अपने बच्चों से करते थे। ये बात समझ गए आप? क्या समझे बताइए तुम। हाँ, क्योंकि सारे ग्वाल बाल कृष्ण थे, पहले वो अपने बच्चों में और दूसरों के बच्चों में भेद करते थे, लेकिन आज वो भेद भी खत्म हो गया और भी आश्चर्य बढ़ गया। तो गोपियों को डबल आश्चर्य हुआ। पहला आश्चर्य क्यों हुआ कि अपने ही बच्चों को वो कृष्ण जितना प्रेम कर रही हैं अभी, और दूसरा डबल आश्चर्य क्यों हुआ कि दूसरों के बच्चों को भी उतना ही प्रेम उनके हृदय में आ रहा है, न जाने क्यों। तो भ्रम बढ़ता गया। तो इस तरह से भगवान ने अपनी माया शक्ति को और भी गाढ़ बना दिया, और भी तीव्र बना दिया, और इस तरह से गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति बढ़ते जा रहा था। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे वर्णन करते हैं। और आगे क्या हुआ, व्रजौकसाम स्वतोकेशु स्नेह वल्याब्दम अन्वहम शनै निस्सीम ववृधे यथा कृष्णे तु पूर्ववत। व्रज ओकसाम मतलब जो रहने वाले निवासी। तो वृंदावन के निवासी स्वतोकेशु, तो का मतलब बच्चा, तो अपने बच्चों के संग में इतना प्रेम करते थे, पहले जितना प्रेम करते थे उससे ज्यादा प्रेम करने लगे। और ये प्रेम की लता, स्नेह वल्ली, वल्ली मतलब लता, स्नेह की लता क्या होने लगा, आ अब्दम, अब्दम मतलब एक साल के लिए, पूरे साल भर के लिए अनवहम हर दिन क्या होता गया, शनैर निस्सीम ववृधे, धीरे 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 से बढ़ता गया। दूसरे शब्दों में माताएं वृंदावन के देख रही थी कि जो हमारे बच्चे हैं उनके प्रति जो हमारे हृदय में प्रेम है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, और इस वृद्धि की कोई सीमा नहीं लग रही है, हर दिन बढ़ते जा रहा है। बड़े आश्चर्य की बात थी। तो ऐसा नहीं कि केवल पहले दिन पे वो भ्रमित हो गए, हर दिन ऐसे भ्रमित होते रहते थे, क्योंकि हर दिन वो अनुभव करते थे कि हमारा प्रेम बढ़ते ही जा रहा है, न जाने ये रुकेगा नहीं रुकेगा। प्रेम बढ़ता गया क्योंकि कृष्ण उनके पुत्र थे, यथा कृष्णे तो अपूर्ववत, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। तो देखिए गोपियों की जो दशा थी वो गौओं की भी थी, क्योंकि गौओं की भी यही हालत, उनके हृदय में जो अपने वत्सों के साथ प्रेम था वो भी बढ़ते जा रहा था, गौओं को भी पता नहीं चल रहा था। और फिर आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, इत्थम आत्मात्मनात्मानम वत्स पाल मिषेण सह पाला पालयन वत्सपो वर्षम चिक्रीडे वन गोष्ठयो। अभी यहां सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, इत्थम आत्मा, आत्मा मतलब कृष्ण, मतलब परमात्मा, परम आत्मा, आत्मना आत्मानम, पालयन कृष्ण भगवान जो कि वत्स बने थे और जो कि ग्वाल बाल बने थे। वैसे वत्स क्या करते हैं, ग्वाल बाल उनका रक्षण करते हैं। तो अभी कृष्ण वत्स पालक बने थे, ग्वाल बाल बने थे, और कृष्ण ग्वाले बने और वत्स भी बने थे, तो कृष्ण ही कृष्ण की रक्षा कर रहे हैं। ये है शब्द आत्मात्मनात्मानं पालयन। तो ये अद्भुत दृश्य दिखने में आया वृंदावन में कि कृष्ण अपना ही पालन खुद कर रहे थे। कृष्ण ग्वाल बालों के रूप में पालन कर रहे थे किनका, वत्सों का, जो भी कृष्ण ही थे। तो कृष्ण अपने आप का पालन कर रहे थे। ऐसे घटनाएं, अद्भुत से अद्भुत घटनाएं होने लगे वृंदावन में, जो कि किसी को पता नहीं चला, केवल कृष्ण को मालूम था। और इस तरह से आ अवदम एक पूरा साल बीत गया, प्राय केवल साल के 5 दिन रहने रह गए। और उस साल के समाप्ति के लिए जब 5 दिन रह गए तो एक घटना हुई, और जब पूरा साल खत्म हो गया तब दूसरी घटना घटी। तो ये दो घटनाएं क्या हैं? वो हम कम से कम जो पहली घटना है वो हम कल सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न?
हरे कृष्ण। जब राधा रानी ने अभिमन्यु जी के साथ विवाह किया था तो राधा रानी माया राधा रानी थी या स्वयं राधा रानी थी, और जो अभिमन्यु थे या वो भगवान श्री कृष्ण का विस्तार था क्या था?
वो भी भगवान, सारे ग्वाल बाल जो है वृंदावन के सब भगवान के विस्तारित रूप है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस, सारे भगवान के लादिनी शक्ति से उत्पन्न हुए हैं सारे ग्वाल बाल गोपियां वृंदावन के, खास करके उनके निकट के जो है। तो ये सब भगवान की लीला है। वास्तव में अभिमन्यु ने राधा रानी को कभी छुआ नहीं, ये केवल कृष्ण के पर के रस के माधुर्य को बढ़ाने के लिए ये एक व्यवस्था है कि सारे गोपियां विवाहित हैं, लेकिन वास्तव में पति पत्नी का संबंध नहीं था, क्योंकि राधा रानी तो केवल कृष्ण की कृष्ण से प्रेम कर सकती हैं और किसी से नहीं। तो इसलिए ये केवल कृष्ण के पर के रस के मिठास को बढ़ाने के लिए व्यवस्था थी।
और जब लास्ट टाइम भगवान प्रभु ने क्लास दिया था तभी भगवान प्रभु ने कह दिया कि पहले से राधा रानी और कृष्ण का और सब गोपियों का कृष्ण के साथ विवाह हो गया था।
हाँ, वो तो एक्चुअली विवाह क्या समारंभ भी हो गया, अनुष्ठान भी हो गया था, और एक बार नहीं कई बार। वास्तव में आनंद वृंदावन इसमें गर्ग संहिता में बताया जाता है कि अब भी थोड़े जो ग्वालबाल थे उनकी पत्नियां थी, और इसलिए कृष्ण गोप बन गए तो उनकी भी वहां पत्नियां थी, तो पति बन गए उनकी भी इच्छा की पूर्ति हो गई, हालांकि बहुत छोटे थे, और वस्त्र हरण की लीला के समय भी वो पति के रूप में ही बन गए। और एक जगह शास्त्र में वर्णन होता है कि वास्तव में विवाह संस्कार भी हुए। तो इस तरह से कृष्ण भगवान का विवाह जो है गोपियों के संग में हुआ था। इसलिए कई लोग टीका करते हैं कि ये विवाह के बाहर हुआ, ये बाहरी लीला है। तो इस तरह से भगवान ने अलग अलग तरह के मधुर लीलाएं वृंदावन में किए। और कोई प्रश्न?